Om Shanti. A very good evening to all of you and a very cordial welcome to the lush green campus of Gyan Sarovar, which is housing Academy for a Better World and the cause, yes, National Jurist Conference. And the topic, Law, Society and Spirituality, a Balanced Perspective. So let us give ourselves a very good round of applause for being here for a very, very noble cause. A very big round of applause, please. Our honorable guests have arrived at the venue. So, I request Honorable Mr. Justice Pramath Patnaik ji, Chairperson, Odisha Real Estate Appellant Tribunal, Brother Vijay Kumar Das, President, Orissa High Court Bar Association, Cuttack, to please come and grace the dais with your presence. And till the time, let us all in the audience be involved in this welcome address through our claps. Thank you. And we also have amongst us the Chairperson of Jurist Wing, respected Rajyogini V.K. Pushpa Didi ji from New Delhi, and we have Rajyogini B.K. Lakshmi Didi, Director Vishwakalyan Sarovar Sonipat, Rajyogini B.K. Manorma Didi ji, Rajyog teacher Ratlam MP, and Rajyogini respected B.K. Lata Didi ji, National Coordinator Jurist Wing. This is a momentous occasion for all of us. Agar aaj ki ghadi ko hum dekhe, to ek anutha sangam hai. Hum sab apne taaliyon ke saath mein zarur saath denge. Ek anutha sangam hai. भारतीय पंचांग के अनुसार 25 मई को नौ तपा के दिन शुरू हुए थे. दीज आर द नाइन डेज ऑफ एक्सेसिव हीट जो कि 2 जून को खत्म हो रहे हैं. तो सीजन इज स्पीकिंग विद हीट. एट द सेम टाइम द मंथ इज एंडिंग एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ वीकेंड एंड एट द सेम टाइम दिस इज एन इवनिंग. बहुत बहुत स्वागत है सबका स्टेज पर और आप सबका ऑडियंस में. तो इस संगम पे जब हर चीज हम देख रहे हैं कि अपने कल्मिनेशन पर पहुंच रही है, ये वो समय है जब हर आत्मा, जब हर प्राणी अपने घर की ओर उन्मुख होता है. और आपको ये कहते हुए बहुत बहुत हर्ष हो रहा है कि आज आप जहां आए हैं, भले उसका नाम एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड है, लेकिन आप अपने घर आए हैं. तो अपने लिए बहुत जोरदार तालियों से अपना ही स्वागत करें. आज आबू पर्वत पर सजा है न्याय का दरबार. ये है ईश्वरीय परिवार, आपका अपना ही परिवार. अपने घर में अपनों का अपनों द्वारा सत्कार है, आपका स्वागत बारंबार है, आपका अभिनंदन बारंबार है. मैं अनुरोध करूंगी हमारी बहनों से जो तिलक और बैजेस के द्वारा हमारे मंचासीन माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे. भारतीय परंपरा हल्दी और कुमकुम का एक मिश्रण है जो हमारे भाल पर सजते ही हमें एक नए स्वमान में पहुंचा देता है. The topic today is a very crucial topic, I should say, because it encompasses not only law, society, but also spirituality in its fold. All of you sitting over here know law, because you are the legal fraternity and you are living in the society. You practice law, you live in society, but the only thing is that we know spirituality, we know law, we know society, but are we really practicing spirituality? हम इस सत्र में और आगे के सत्रों में इसी गहन विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज बहुत गहराई में न जाकर के कुछ शांति का भी अनुभव करेंगे, कुछ आत्मिक प्रेम का अनुभव करेंगे, कुछ परमात्म आनंद का अनुभव करेंगे। आज तो स्वागत की बेला है, तो इस स्वागत की प्रथम कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ मधुरवाणी ग्रुप। हमारे जीवन में हमारे कैसे संगीत मधुरता घोलता है, और अगर उसमें स्वागत का मिश्रण हो तो आज आपको मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा एक बहुत सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाने वाला है। हम जोरदार तालियों से इन गायकों का उत्साहवर्धन करेंगे।
एक बार सभी साथ में कह लें, ओम शांति। परम न्यायकर्ता के दर न्याय के दाता आए हैं, नीति नियंता आए हैं, नीति निर्माता आए हैं। आज तो अरावली के भी ये पर्वत श्रृंखलाएं ये भी मुस्कुराई हैं और आपके स्वागत में खुशियों के गीत गुनगुनाई हैं। जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार कर लें।
धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। ज्ञान सरोवर बना मनोहर आपका है अपना परिवार। न्याय के मंदिर में करते न्याय देवों का सत्कार। न्याय के मंदिर में करते न्याय देवों का सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार। आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार। रंग जाए अध्यात्म में कानून की तस्वीर। पल में पलट जाएगी दुनिया की तकदीर। रंग जाए अध्यात्म में कानून की तस्वीर। पल में पलट जाएगी दुनिया की तकदीर। इंसाफ के देवों आओ समय की सुनो पुकार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। स्वर्णिम विचार के द्वारा स्वर्णिम संसार बनाए। एक राह के राही हम प्रभु योजना सफल बनाए। स्व स्वर्णिम विचार के द्वारा स्वर्णिम संसार बनाए, एक राह के राही हम प्रभु योजना सफल बनाए। न्याय नीति का जहान हो सब में प्यार ही प्यार, आबू धरती पर आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। अरावली की चोटियां झुक झुक नमन है करती, प्यार से आबू की फिजाए अभिनंदन है करती। अरावली की चोटियां झुक झुक नमन है करती, प्यार से आबू की फिजाए अभिनंदन है करती। स्वयं विधाता लिए बड़े किरणों में विजयी हार, आबू धरती पर आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। ज्ञान सरोवर बना मनोहर आपका परिवार, न्याय के मंदिर में करते न्याय देवों का सत्कार, न्याय के मंदिर में करते न्याय देवों का सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार।
समझती हूँ जितना जोश गीत में था उतना जोश हमारी तालियों में नहीं था। बहुत सुंदर इस गीत के पश्चात आइए नृत्य की ओर बढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की सभी प्रिय संतान आज इस प्रांगण में कितने प्यार से बैठे हैं, कुछ शांति की चाहत में, कुछ शक्ति की चाहत में, कुछ प्रेम की चाहत में, लेकिन इन सब प्राप्तियों को आज भरपूरता से अपनी झोली में भरने का समय आ चुका है। तो उस ईश्वरीय संतान अर्थात शिव के बालकों का आज स्वागत अतिथि देवो भवा, जैसे कि भारतीय संस्कृति में परंपरा है श्री गणेशाय नमः। तो आइए गणेश वंदना गणेश स्तुति से आरंभ करते हैं। कुमारी वैष्णवी आप नासिक श्री गणेश महोत्सव की नगरी से पधारी हैं, आप सभी का गणेश स्तुति के साथ स्वागत करने के लिए। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कुमारी वैष्णवी।
गजाननयुतं गणेश्वरं 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 भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं भजामि सततं गजाननयुतं गणेश्वरं
आवाज थी उतनी तेज हमारे तालियों की भी आवाज हो, बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो मैंने जैसे कहा ये तो स्वागत है और ये स्वागत बारंबार है, ये अभिनंदन बारंबार है, ये अभिवादन बारंबार है। और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ वेलकम स्पीच के लिए आदरणीय राजयोगिनी बी के लता दीदी को। आप जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, माउंट आबू में रहते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की लीगल एडवाइजर भी हैं और ब्रह्मा कुमारीज के लीगल मैटर्स में आपने वेरियस कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड इवन सुप्रीम कोर्ट में संस्था को रिप्रेजेंट किया है। यू आर अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई एंड 1983 में आप इस संस्था के समीप आए थे और 1994 में अपना अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया। तो आज बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करने के लिए आतुरता से आ रही हैं आदरणीय लता दीदी जी।
हम सभी तीन बार बोलेंगे ओम शांति मेरे साथ साथ। ओम शांति, ओम शांति, परमपिता परमात्मा। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ इस सभा के अंदर, क्योंकि उनका ही शुक्रिया है जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस आप और हम सब के लिए आयोजित की ताकि हम सब आपस में मिल सकें। तो सबसे पहले मेरा स्वागत परमपिता परमात्मा का, फिर परमात्मा के हम सभी अनन्य बच्चे, मंच पर उपस्थित हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स प्रणाथ पटनायक जी और विजय कुमार दास जी, साथ में हमारी चेयरपर्सन बीके राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी, राजयोगिनी बीके मनोरमा दीदी जी, राजयोगिनी बीके लक्ष्मी दीदी जी, हमारी आज की मास्टर ऑफ सेरेमनी निधि दीदी जी, सभी का स्वागत करते हुए जिन्होंने हमारे सामने मधुरवाणी ग्रुप ने अभी जो गीत प्रस्तुत किया उन सब का भी, और ये कन्या क्यारा का भी बहुत बहुत स्वागत है। इतना सुंदर आज का ये समारोह परमात्मा ने हम सभी के लिए आयोजन किया है और टॉपिक भी पूरे कॉन्फ्रेंस में जो रखा है, थीम जो है नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर स्पिरिचुअलिटी ए बैलेंस्ड प्रस्पेक्टिव। इट हैज टू बी रिक्वायर्ड बैलेंस इवन इन द लाइफ, वी रिक्वायर बैलेंस एट एवरी फुट। हमारे हर स्टेप में बैलेंस की आवश्यकता होती है, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कैसा भी कार्य कर रहे हैं, अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम सक्सेस नहीं पा सकते, और इसीलिए इसके ऊपर एम्फसाइज करने के लिए ही ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया कि हर एक को जीवन में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। चाहे हम गृहस्थ में रह रहे हैं, चाहे फिर हम स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हैं, तो भी हमें बैलेंस चाहिए। जैसे अगर आप कल स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं तो भी आपको गृहस्थ की लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी के अंदर बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे हम उन सन्यासियों की तरह नहीं शिक्षा दी जाती कि घर बार छोड़ देना है, तो वो बैलेंस नहीं होता है। दैट्स नॉट ए बैलेंस। दे लीव बिहाइंड देयर फैमिली मेंबर्स इन सोरो, इन ग्रीफ। तो यहाँ वो नहीं है। यहाँ एवरीबडी हैज टू रिमेन हैप्पी। यहाँ है सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। सो देयर इज ए बैलेंस इन एवरीथिंग। और आपने देखा मैंने क्या बोला, सुख देना है फिर सुख लेना है, दुआएं देनी है फिर दुआएं लेनी है, क्योंकि जो हम देते हैं वही रिटर्न हमारे पास आ जाता है। इसीलिए लेने में तो क्या है कि हम देंगे तो बट नेचुरली वी विल गेट द सेम थिंग्स अगेन। तो यही हम सबको यहाँ पे परमात्मा रोज शिक्षा देते हैं कि आप सभी का जीवन इतना बैलेंस वाला हो कि सभी को उससे प्रेरणा मिले कि हमें ये जीवन अपने लिए भी अपनाना चाहिए। और आप सभी कितने लकी हैं, आप किसके इनविटेशन पे आए हो यहाँ, किसके इनविटेशन पे आए हो, परमात्मा के इनविटेशन पे है ना। क्या लिखा है, परमात्मा का कॉर्डियल इनविटेशन है ना आप सभी को, और आप सभी यहाँ पहुंचे हो परमात्मा के कॉर्डियल इनविटेशन पे। तो कितने ना सौभाग्यशाली हो गए आप कि किसने, परमात्मा ने आपको बुलाया है। सो दिस इज अवर लक, से वी आर बीन इनवाइटेड बाय द गॉड हिमसेल्फ टू रिमेन प्रेजेंट इन दिस सेमिनार, इन दिस कॉन्फ्रेंस। फॉर व्हाट, द सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर व्हाट, व्हाई हैव यू ऑल कम ओवर हियर। इन्विटेशंस तो बहुतों को दिया था, हजारों में इन्विटेशंस दिए हैं, और आप 400-500 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप सोचो आप कितने लकी हैं। और यही दर्शाता है कि ये, और यही दर्शाता है कि इतनों को इन्विटेशन देने के बाद आप इतने क्यों आए, क्योंकि आप सभी का भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट है। यू ऑल हैव इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, और तभी आप सब यहाँ आए हो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। क्योंकि अब हम सब बहुत थक चुके हैं दुनिया में देखते हुए, नकारात्मकता को देखते हुए, जहाँ देखो वहाँ दुख और अशांति ही अशांति है। तो उस दुख और अशांति से मुक्ति पाने के लिए हम सभी बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं मिल पा रही है। पर अब मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व से कहती हूँ कि आप आज सही स्थान पर आए हो, और यहाँ पर अगर आप सीख के जाओगे और उस अभ्यास को अपने जीवन में निरंतर करते रहोगे तो 100% आपके जीवन में सुख और शांति आ ही जाएगी। तो इसीलिए जो भी यहाँ सीखोगे उसको अपने जीवन में अपनाते चलो, धारणा करते चलो। हमारे स्पिरिचुअलिटी में चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये चार सब्जेक्ट हमारे हैं यहाँ पे। तो स्कूलों में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सबसे पहले परमात्मा आके हमें नॉलेज देते हैं, ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज, और वो ओशन ऑफ नॉलेज यहाँ आकर हमें स्वयं की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरी पहचान मिलने के बाद परमात्मा अपनी पहचान देते हैं कि मैं भगवान परमात्मा कौन हूँ, और वो ज्ञान मिलने के बाद हम उनके साथ मेडिटेशन करते हैं, योग लगाते हैं, और जब हम योग लगाते हैं तो हमारे अंदर वो कनेक्शन होने के कारण, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होने के कारण पावर आती है। मोबाइल को चार्ज करना होता है तो उसको हमें चार्जिंग पॉइंट पे लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर मुझे मेरी आत्मा को चार्ज करना है तो परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तब तब हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति और बल आता जाता है। आपको मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि परमात्मा 24/7 शक्तियां और गुण देते रहते हैं, उनसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, तुमने मांगने की क्या आवश्यकता है, अधिकारी बनकर मेरे से सब कुछ ले लो। बस हमें उन्हें याद करना है, अपने आप को कनेक्ट करते ही वो सारी शक्तियां और गुण हमारे अंदर समाते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, एंड वी बिकम पावरफुल। आज भी हमें बहुत ही मतलब अपने अंदर भी अपने आप में भी गर्व होता है कि हम ऐसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं जहां हमें कितनी स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है और हमें सिर्फ एक ही सिखाया जाता है, दाता बनो, देते चलो, बस देते चलो, बैलेंस इन द लाइफ, मेन थिंग इज बैलेंस इन द लाइफ। तो हम बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते चलते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ने से ही हम एक बैलेंस्ड सोसाइटी और लॉ और स्पिरिचुअलिटी में रखते हुए ऐसा जीवन जी रहे हैं। कई लोग हमसे कहते हैं आप लोगों ने सब कुछ त्याग दिया तो आप लोगों को ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर मैं कहूंगी हमने कुछ भी नहीं त्यागा है। आप कहेंगे ये सफेद कपड़े ले लिए, रंगीन कपड़े त्याग दिए, इट्स नॉट त्याग। आज भी देखो लोगों को सफेद कपड़े पसंद ज्यादा आते हैं मगर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सफेद कपड़े अपनाते नहीं है। अदरवाइज व्हाइट इज द कलर ऑफ प्यूरिटी, कलर ऑफ पीस, एंड सो मेनी वैल्यूज आर देयर इन द व्हाइट ओनली। सो व्हाइट कलर इज नॉट कि हमने त्याग किया है, बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं आप बिल्कुल बाहर का खाना पीना नहीं खाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ फॉर्म ऑफ प्यूरिटी। अगर आप देखो हमारे सन्यासी वगैरह भी जो हैं, जब वो सन्यास करते हैं तो कई चीजों का त्याग करते हैं। इन द कॉन्ट्ररी हम लोगों ने कुछ भी नहीं त्याग किया। आप देखो इतने बड़े बड़े हॉल बने हैं, इतना बड़ा बड़ा रेसिडेंस है, तो ये सब हमारे लिए ही तो है ना। कहते हैं फैमिली त्याग दिए, अरे वहां पे 5-8 मेंबर की फैमिली थी और यहाँ हमें देखो कितने लाखों की फैमिली मिल गई है। आज इंस्टीट्यूशन के मोर देन 9 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी फैमिली है ना मोर देन 9 लाख की है। आप में से किसी की 9 लाख की फैमिली है? नहीं है ना। 4, 8, 10, 5, 2 इतनी ही फैमिली होगी और मेरी फैमिली 9 लाख से ऊपर की है। तो कहाँ है त्याग, कहाँ है? कोई त्याग नहीं है, बस एक मन से बेहद का त्याग है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, ये देह तो मेरा वस्त्र है, इसके द्वारा मैं इस नाटक मंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ और उस पार्ट के अंदर ही बैलेंस चाहिए और यही बैलेंस है जो लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर रखते हुए हम समाज में बढ़ रहे हैं। दोस्त के और कहते हुए मैं अपना यहाँ पे विराम देती हूँ। एक मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, वन डे, वन आवर, वन मिनट विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ, हेंस अवॉइड fights, anger, hatred, be kind to everyone and thank God for everything। ये हम करते हैं सुबह उठते ही, सबसे पहले हम परमात्मा को थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इन्होंने हमारे अंदर इतनी वैल्यूज भर दी है और इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम जो मेडिटेशन करते हैं उसके द्वारा हमें वो हमें शक्तियों से भरपूर कर देता है। तो सुबह से फिर उसके बाद हमें ज्ञान के द्वारा इतना अच्छा प्रवचन देते हैं कि मुझे आज मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में क्या करना है, क्या धारणाएं करनी है, कौन सी वैल्यू को अपने ऊपर ज्यादा जोर करना है, दैट्स वॉल ही टीचिज अस अर्ली इन द मॉर्निंग। और हम पूरा दिन उन्हीं के ऊपर अपने अंदर फोकस डालते हुए, अपने अंदर धारणाएं करते हुए सेवा करते रहते हैं, तो हमारा जीवन सिर्फ सेवा के लिए ही दिया हुआ है। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, इन सब से जो मेन है कि शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है, कितना जलता है। ओम शांति।
थैंक यू सिस्टर लता दीदी एंड अ वॉर्म वेलकम टू यू एज वेल फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। एक लीगल फ्रेटर्निटी, ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसको रोज लॉलेसनेस, पीसलेसनेस, लवलेसनेस से डील करना पड़ता है, नेगेटिविटी से डील करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने मन में किस प्रकार से शांति को, शक्ति को, धैर्य को धारण कर सके। कहने के लिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं दुनिया में, तो फिर ब्रह्मा कुमारीज अनोखी क्या है? और अगर ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यूरिस्ट विंग क्या है? आखिर क्यों और कैसे हम यहां बैठे हैं और ज्यूरिस्ट की सेवा या ज्यूरिस्ट द्वारा सेवा कैसे हो सकती है? क्या सोसाइटी को इससे लाभ मिल सकता है? आइए थोड़ा सा प्रकाश हम इस पर भी डाल लें। मैं निमंत्रण देती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी को। आप डायरेक्टर हैं मानसरोवर सोनीपत रिट्रीट सेंटर। आप न केवल ज्यूरिस्ट विंग की मेंबर हैं बल्कि पंजाब जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं ज्यूरिस्ट विंग के लिए। 1964, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव बीन बॉर्न दैट बाय दैट टाइम, 1964 में आप इस इंस्टीट्यूशन के संपर्क में आई और जैसे जैसे गहनता ईश्वरीय ज्ञान की आपके अंदर समाति चली गई, आपने अपना जीवन ईश्वरीय कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। अदरवाइज आप मैथ से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने वैल्यूज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। वैल्यू एजुकेशन इज वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन सेल्फ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, इस तरह से बहुत सारे व्याख्यान उन्होंने कितने ही टीवी शोज में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में किए हैं और न जाने कितने ही सम्मान आपको इस ईश्वरीय सेवा के लिए प्राप्त हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज और ज्यूरिस्ट विंग आखिर है क्या। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी।
ओम शांति। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। सुप्रीम जस्टिस, सर्वशक्तिवान ईश्वर पिता की प्यारी संतान, मंच पर उपस्थित न्याय प्रभाग से जुड़ी हुई महान हस्तियां एवं सभा में उपस्थित पूरे भारत देश से आए हुए न्यायविद प्रभाग के बहुत ही विशेष आत्माएं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थान है जिसकी पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी 140 देशों में लगभग 10,000 ब्रांचेस हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यूएन के अंदर भी यूनिसेफ और इकोसोप में कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानव जीवन के अंदर जो दुख, अशांति, परेशानियां, तनाव, टेंशन और डिप्रेशन चारों तरफ हम देख रहे हैं, उससे कैसे छुटकारा मिले, उसके लिए यहाँ जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसका उद्देश्य यही है कि मानव की सोच कैसे बदले। क्योंकि जब उसके चिंतन में बदलाव आता है तो उसका मन खुश रह सकता है, और जब मन शांत और हर्षित रहता है तभी उसका तन भी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि आज मेडिकल साइंस ये मानती है कि 95% से अधिक बीमारियों का कारण मनुष्य की गलत सोच है। जब मेडिटेशन से तन और मन अच्छा होता है तो संबंधों में भी मधुरता आती है और आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय बिना किसी भाषा भेद, जाति भेद, रंग भेद के समाज के हर वर्ग की आत्माओं की सेवा करता है। सबके जीवन के अंदर नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता की जागृति देता है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपूर्ण समाज की सेवा के लिए लगभग 20 विंग्स बने हुए हैं जो समाज के हर वर्ग को छूते हैं। झुग्गी झोपड़ी से लेकर बड़े से बड़े राजनेता तक हर मानव के जीवन के अंदर शांति कैसे आए, सबके जीवन का विकास कैसे हो, तो उसके लिए 20 विंग्स हर वर्ग की सेवा करती हैं। इसमें जैसे मेडिकल विंग है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा बने, क्योंकि जब मन अच्छा होगा तो तन भी तंदुरुस्त होगा, और उसके साथ साथ जीवन के अंदर जो व्यसन है, जो बुराइयां हैं, नशे हैं, जिसके कारण आज हमारा समाज बहुत विकृत होता जा रहा है, वो कैसे ठीक हो। इसी तरह यूथ विंग, आज हम देखते हैं कि युवा वर्ग जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है, वो नशों में पड़कर के कैसे जीवन को बर्बाद कर रहा है, जीवन की सही दिशा उसे नहीं मिल रही है। तो इसी सूर्य विश्वविद्यालय के लगभग 1 लाख से भी अधिक ऐसे युवा भाई बहने हैं जो जीवन के अंदर संयमी हैं, चरित्रवान हैं, और वो अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा समाज के युवाओं को स्कूल और कॉलेजेज में जाकर के एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा देते हैं। इसी तरह से महिला विंग है और पॉलिटिकल विंग है, राजनेताओं के जीवन में नैतिकता कैसे आए, रिलीजियस विंग है, और इन सभी विंग्स में से एक महत्वपूर्ण विंग है जूरिस्ट विंग। इसी सूर्य विश्वविद्यालय का जो जूरिस्ट विंग है, जिसमें आप सभी आते हैं, तो इस सूर्य विश्वविद्यालय में किस प्रकार से ये जूरिस्ट प्रभाग, इस न्यायविद प्रभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं समाज के अंदर आज कितना भ्रष्टाचार है, पापाचार है, अत्याचार है, चारों तरफ जैसे कि अनैतिकता की आंधी सी चल रही है। और ऐसे समय पर किसी कवि के वो शब्द याद आते हैं कि कहीं पर खून, कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सचमुच में ऐसा वातावरण आज चारों तरफ है, कब क्या हो जाए कुछ निश्चित नहीं है, कुछ स्थिर नहीं है, बहुत भय का वातावरण है, अस्थिरता का वातावरण है। और ऐसे समय पर एक दुखी पीड़ित इंसान सबसे ज्यादा किससे अपेक्षा रखता है, किस तरफ आशा की दृष्टि से निभाता है, वो आपका प्रभाग है, न्याय का प्रभाग है। उसे लगता है कि यहां से ही मुझे कुछ राहत मिल सकती है, और इसीलिए वो अदालत को न्याय के मंदिर के रूप में देखता है और न्यायदाताओं को उस मंदिर के देवता समझ करके उनके पास जाता है। तो आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस समाज को शांति और राहत देने के लिए। वैसे तो आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुशल हैं, बहुत जिम्मेवार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन फिर भी जहां तक न्याय की बात है तो उसके लिए मन का शांत होना, स्थिर होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन सकते, तब तक सही न्याय नहीं दे पाते हैं, और आध्यात्मिकता उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो हमारे बहुत ही ऑनरेबल जजेज हैं, एडवोकेट्स हैं, वो अपने जीवन के अंदर उन आध्यात्मिक शक्तियों को अपना करके और समाज के अंदर कैसे संतुलन लाएं, उसकी एक बहुत सुंदर सेवा करते हैं। सचमुच में वो स्पिरिचुअलिटी, वो आध्यात्मिकता क्या है, ये शब्द सुनते ही हम थोड़ा सा सोचते हैं कि शायद ये तो कोई अलग रास्ता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है स्टडी ऑफ स्पिरिट, स्टडी ऑफ सोल, आत्म चिंतन करना, अपने मन को ईश्वर पिता के साथ जोड़ना, हम सब आत्माएं हैं और उस एक पिता की संतान हैं, इस भाव को जीवन में भरना, यही तो आध्यात्मिकता है। और ये स्पिरिचुअलिटी कोई अलग रास्ता नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ही जीवन जीने का सही रास्ता है, क्योंकि इसका मतलब ही है हमारे अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, हम अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर और आत्मा के जो मूल गुण है, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता, उसके साथ जीवन जिएं और उसके साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें, यही आध्यात्मिकता है। ये कोई रूढ़िवाद, कोई धर्म या मठपंथ नहीं है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म के नाम पर हम समाज में बढ़ते चले गए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, और आपस में एक द्वेष भाव पैदा होता गया। लेकिन आध्यात्मिकता हमें जोड़ती है कि चाहे हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। तो सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा का भाव मन के अंदर लाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो विधि वेता हैं, उनका देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब फिर से इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, फिर से इस भारत देश की संप्रभुता को अक्षुण बनाए रखने के लिए आप सबके योगदान की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि जब आध्यात्मिकता जीवन में आती है तो वो आंतरिक शक्तियां, इनर रिसोर्सेज डेवलप होते हैं, जिससे हम सच्चा न्याय दे सकते हैं और जिसके आधार पर ही हम इस समाज के अंदर लॉ, सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी का संतुलन बना करके सबके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ओम शांति।
थैंक यू आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आपने एक बात को बहुत प्यार से स्पष्ट किया कि स्पिरिचुअलिटी कोई दूसरी दुनिया की चीज, दूसरे लोगों की चीज नहीं है, ये हमारे अपनी चीज है और हमारे अपने फायदे के लिए है। जितने दिन आप यहाँ रहेंगे, आत्मा और परमात्मा ये दो शब्द आप बहुत सुनेंगे। आत्मा शब्द सुन सुन के डर तो नहीं जा रहे ना, डर तो नहीं लग रहा, आनंद आ रहा है। अच्छा, तो बात यह है कि हम ज्यूरिस बाय प्रोफेशन थोड़ा बाद में है, लेकिन हमारा अपना अस्तित्व जो है वो स्पिरिट्स ही है, तो उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। जो ज्यूरिस्ट विंग है, ये खास केवल लीगल प्रैक्टिशनर्स और जजेस के लिए नहीं है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है। साथ में जो लीगल सिस्टम बना हुआ है कोर्ट्स का या वेरियस ऑफिसर्स का, उनके लिए भी है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और जो भी किसी भी रूप से कैसे भी लॉ से जुड़े हुए हैं, उन सभी को अपने एम्बिट में लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी हमारे सामने बैठी ही हैं। वाइस चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी जी आपसे अभी रूबरू हो रहे हैं, कल आपसे मुखातिब भी होंगे। हमारे दो पैट्रन्स हैं, ऑनरेबल जस्टिस ईश्वर्या जी एंड ऑनरेबल जस्टिस पाश्चापुरी जी। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में से एक आदरणीय लता दीदी को आप स्टेज पर देख रहे हैं। हमारे और भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, आदरणीय नतमल भाई जी जो उड़ीसा से हमारे गेस्ट को, ऑनरेबल गेस्ट को लेकर के आए हैं। देन सिस्टर रश्मि ओझा, शी इज अ वेरी ब्राइट सोल। एंड देन विद्याबेन, विद्या दीदी जी फ्रॉम कर्नाटका, शी इज ऑल्सो अ नेशनल कोऑर्डिनेटर, किसी कारणवश वो अभी आपके समक्ष नहीं आ पाई हैं। और हमारी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर श्रद्धा दीदी, वो भी आपसे कल मुलाकात करेंगी और हम सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। जो भी यहाँ पर कल पधारे हैं या आज पधारे हैं उनसे पूछना चाहूंगी, आपको ठहरने की समुचित व्यवस्था तो मिली है ना? आप सब संतुष्ट हैं? भोजन पसंद आया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपका घर परिवार है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो जरूर आप संपर्क करें, आपकी बिल्डिंग के जो इंचार्ज है उनसे भी कर सकते हैं, नहीं तो बीके भाई बहने आपको दिख रहे हैं, आपके गाइड्स भी आए, आप जरूर उनसे शेयर कीजिएगा। एक बात जरूर है कि आपको ये लग सकता है कि आखिर सब स्पिरिचुअल बन गए तो फिर लीगल प्रोफेशन, इसका फ्यूचर क्या होगा? बात ऐसी नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि लीगल प्रोफेशन केवल जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए नहीं है, लीगल प्रोफेशन लॉफुलनेस को अपने जीवन में इम्बाइब करने के लिए है। तो आपको इस स्पिरिचुअलिटी को इम्बाइब करने से बिल्कुल मत डरिएगा कि आपकी इनकम में कहीं कुछ कमी आने वाली है, लेकिन आपके अपने अनुभव हैं कि जब किसी को आपने न्याय दिलाया है और उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई है और उसके दिल से जो दुआएं निकली हैं उसने आपको फीस से ज्यादा खुशी दी है ना? थैंक यू सो मच। तो ये जो शक्ति है ना, दुआओं की शक्ति, किसी को खुश करने की शक्ति, ये परमात्मा को धन्यवाद स्वतः ही दिल से दिलाती है, और उस परमात्मा की महिमा ही है जो ये वैल्यूज, आज हम कितना भी झूठ बोले लेकिन पसंद हमें सच्चाई आती, कोई हमसे झूठ बोले ये पसंद नहीं आता, है ना ये बात? हाँ, तो सच्चाई हमें पसंद है, और ये सच्चाई देने वाला वो ईश्वर जिसको कहा ही है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, आइए उसकी महिमा, उसके धाम की महिमा आज थोड़ी सी सुन लें, देख लें। एक नृत्य के माध्यम से मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ को, आप बहुत सुंदर नृत्य लेकर आई हैं करोल बावन दिल्ली से, तो तालियों के साथ स्वागत करेंगी छोटी सी बच्ची।
लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया सर्वेश्वर शिव परम पिता, भूमंडल है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया हो सर्वेश्वर शिव परम पिता, भूमंडल पर है आया।
बाबा जहाँ किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा।
ब्यूटिफुल डांस। एक बार और तालियों के साथ। एक फ्रेंच थिंकर हैं वॉल्टेयर, उन्होंने कहा है, मल्टीट्यूड ऑफ लॉज इन अ कंट्री इन अ सोसाइटी इज जस्ट लाइक टू मेनी फिजिशियंस, विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड मैलेडी। तो इस वीकनेस को, इस मैलेडी को, इस वाइस को हम कैसे सोसाइटी से दूर कर सकते हैं, वो मार्ग स्पिरिचुअलिटी प्रशस्त करती है। और स्पिरिचुअलिटी हमको वो दृष्टिकोण देती है जिससे हम लॉज को और सोसाइटी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, लॉफुल सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रमद पटनायक जी। आप चेयरपर्सन हैं ओडिशा रियल एस्टेट एपिलेंट ट्रिब्यूनल के। In 2000, for 6 years, you have worked as additional standing counsel of Orissa. Then, for 3 years, you had been government advocate in Orissa High Court. And then, you were government advocate in principal bench, Orissa Administrative Tribunal, Bhubaneswar. 2014 mein, आपका एलिवेशन एज एडिशनल जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट हुआ। यू गॉट ट्रांसफर टू झारखंड एज एडिशनल जज एंड वेयर ही टुक ओथ एज परमानेंट जज ऑफ झारखंड हाई कोर्ट इन 2016 एंड देन रिपैट्रिएटेड टू उड़ीसा हाई कोर्ट। और वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू सर हियर विद अस। एंड हम आपसे आपके दिल के उद्गार अवश्य सुनना चाहेंगे। कृपया तालियों के साथ स्वागत करेंगे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रमद पटनायक जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं सबसे पहले आप सबका क्षमा चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, मेरे को माफ कीजिएगा। In today's function, National Jewish Conference on Law, Society and Spirituality, Balanced Perspective, today is the inaugural session. Esteemed Rajyogini B.K. Manoramaji, Esteemed Rajyogini B.K. Puspaji, Esteemed Rajyogini B.K. Lakshmiji, एस्टीम राजयोगिनी बी के लता जी, माई एस्टीम्ड सीनियर ब्रदर विजय कुमार दास सीनियर एडवोकेट प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बी के निधि एफसीए मेंबर ऑफ जूरिस्ट विंग कानपुर ऑन द डायस, जस्टिस जी एस शतपथी द सिटिंग जज ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी judge of Madhya Pradesh High Court. उड़ीसा से आए हैं लाथुराम लखन जी और सो मेनी एडवोकेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ द डायस. आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू द ऑगस्ट ऑडियंस. In fact, I am overwhelmed by the generosity and the cooperation extended by all the members of this esteemed organization. As we delve into the annals of modern science and unearth the mysteries of universe, sometimes we feel there is greater need for spiritualism. In today's troubled times, the world is fraught with international war, poverty, inequality, and there is a greater need for spiritualism, which can lead us to greater truth. Vedas speak of सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवाक् भवेत्. The theme of profound spiritualism is accompanied with social well-being. As you all know, in common parlance, laws are made by the law-making authority to regulate the behavior of the citizens, of the inhabitants. In the primitive time, there was a survival of the fittest. When it became disastrous, there was need for creation of state, then there was need for laws. Subsequently, there was magico-religious communities which believed in superstitious belief of second thoughts and invisible gods. Anyway, there has been evolution of law. Sometimes the question is posed whether the law is spiritual. It is difficult to answer that, but just like spiritualism has its laws, law has its own spiritual dimensions. If we find the various provisions of the law and the provisions of the Constitution of India, there we can find the spiritual dimension for the greater well-being of the society. In fact, laws and society and spirituality in a nutshell are interrelated, because laws are meant to stop the unruly behavior of the citizens, to adhere to the societal norms, and ultimately the goal of spiritualism is achieved. in today's time, in the present scenario, there is a greater need for now the emphasis on, instead of litigation, go towards arbitration. Instead of arbitration, go towards mediation. Instead of mediation, go towards discussion. Instead of discussion, go towards spirituality. Because that would ultimately do away with intrapersonal conflicts. Which is the need of the hour. Again, I would like to wind up my address by quoting assurance given in Mahabharata in not less than 11 times. Yata dharma tata jaya. Where there is dharma, there is victory. This is also the motto of Supreme Court of India. Once again, I extend my heartfelt gratitude to the organizers for giving me opportunity to address this august gathering. I feel privileged, blessed to be amongst all of us. Thank you very much.
Thank you for your very kind and generous words, brother. And really, you have set the tone of the conference. I would like to quote two of your things. Whether the law is spiritual, one thing, and we would like to address that during the conference. And the second one, let us go from litigation to arbitration, to mediation, to discussion, and finally, the epic of all things, the spirituality. Wonderful thing. And this is the thing that was echoed, you know, by Junior Martin Luther King. He said, morality cannot be legislated, but behavior can be regulated. Judicial decrees may not change the heart, but they may restrain the heartless. So that is what you have been striving for, and we really bow our heads down to the legal fraternity for ensuring and restraining the heartless. But now we all will become heartful over here. So let's move forward. Thank you. Let's move forward to our second guest of honor, Brother Bijay Kumar Dasji. You have had a very long legal career. You're a very senior advocate, and presently you are the president of Orissa High Court Bar Association in Cuttack. Sir, we would really love to and be honored in hearing you out. Respected brother, Bijay Kumar Dasji. Please put your hands together to welcome brother.
Om Shanti. Respected Honorable Justice Pramod Patnaik, my younger brother, who is a very brilliant judge. He was judge of Odisha High Court, then subsequently became transferred to Jharkhand, and also he earned a very good name. respected Rajajogini, my sister B.K. Pushpa, the chairperson, juries doing New Delhi, Rajajogini, respected sister B.K. Lata, Rajajogini, respected B.K. Lakshmi, respected Rajajogini sister B.K. Manorama, respected B.K. Nidhi, the member juries doing Kanpur, Honorable Justice Yes, Satpathy is a senior judge and a very competent judge of Odisha High Court, what I heard. Honorable Justice of Madhya Pradesh High Court also present. Retired judges. I found some district judges also of various states, learned senior advocates coming across the country, respected sisters. And friends. I don't know why I was invited to this, a very spiritual organization and also this function. I am not worthy of this function to be the guest. Anyway, it's a God's blessing. Today, the topic is the National Jurist Conference. Today the topic is law, society and spirituality, balanced perspective. And also it is a reception session. Anyway, Odisha head, this Nathmal Bhai, he said, I'm also grateful to Nathmal Bhai and also the organizers who organized this very beautiful function. Whenever I'm coming to this Mount Abu, I found the face of everybody. I'm feeling that they are all my brothers and they are all my sisters. I don't know what happened. That's so close to my heart, I don't remember. This is the vibration, in fact, of this area. I'm really grateful for this. That is a God's blessing and also that's a God's desire. Anyway, Nathmal Bhai said, even if it's a reception session, you say something about 10 to 15 minutes, I will not take much more time, my friends. Before I start my words or speech, I'll say something about the Ramayana, the great saint Tulsidas, and also the Valmiki. Ramayana, two words. That is outside, I wanted to say something because this is the function. I'll tell why I'm citing these words of these two saints. Sons. Both the saints said Lord Ram was not worshipped for his good deeds. He was worshipped for his success, how he came through difficult situations. The way Lord Ram came through difficult situations, that is why he was worshipped, not for his good deeds. That is the truth. Tulsidas also Valmiki state in the Ramayana. Why I am saying all these things? I am saying these sisters, honorable sisters and my brothers who have sacrificed their life. They have forgotten their entire society. Each
sisters and his brothers, learned brothers of this function I found. They are very, very, very dedicated to their own work. That is also God's gift, I'm telling you. I'm also grateful for their activities, and also I'm also grateful for being present in this function because of this. My friends, I will not take much more of time. I will take only 10 minutes because the topic, in fact, my learned younger brother, Justice Patnaik, he said about Mahabharat, and also he said many things it's about the mediation. In fact, in the law, Honorable Justice Satpath is there, other Honorable Judges are there. The mediation is the only alternative where the serious litigations are going to be solved. So mediation, in fact, I agree with this, and also Justice Patnaik said rightly, this mediation is the real source and real path to come to the conclusion. My friends, man is a social being. By virtue of his nature, he has to live in a society with the intellect and creativity. Human beings form the society which come into existence by this formative process. Thus came organized institutions. Social institutions have come out of his powerful creativity. The world of science has now come into existence. It is now a world of constructs. Jurisprudence, sociology, and politics have become discipline for discovery of the structure of society. State is the child of society. Society is a living organization which nourished all the living veins of the society and makes it viable. State is a function of law and guardian of society. What once belonged to the society now belongs to the state. Necessity, a man in society is covered and influenced by jurisprudence, sociology and human approaches. There cannot be isolation. Human beings are therefore influenced by norms of institutional, social, economic and personal life. Thus, we proceed from geography to history and then to political institutions, and that has given rise to different aspects of laws, namely private and public and procedural and adjective and customary and legislation and fundamental and final. In ancient times, moral principles were regarded as a principle of law, that is dharma, consists of norms which bind on the people in society and principles on which society and the state have to run. In Ramayana, we find Ravan immediately before the death gave instruction to Ramchandra, Lord Ramchandra, as to how Ram should rule the state. In Mahabharata, Bhishma on his bed of arrows gave instruction to Yudhishthira. So also in Kautilya's Arthashastra, the rule and the laws have been expounded. Those are all based on principles of dharma. During Buddhist period, decisions were being taken for trial of persons by a congregation of public hall, which was known as Khyadik Sabha. Administration of justice is a coin of which one side is the judiciary and the other side is the bar. The definition of the judge has been given by Lord Goderat of England. The qualities to be looked for a judge are first that he should be a responsible capacity, he should be a man of even temper, and one who can be trusted to display the continue to display to the litigant and bar. In short, I may use such abusive expression, you should be a gentleman. Members of the bar should cooperation and assist the judges in dispensing justice. With such cooperation, there have been many developments in socio-economic condition for the country in public interest. The period has come for a new theory of judicial review and constitutional action. Socialistic state is the prime concern for the people. Welfare of the people should be promoted by securing social order in which justice, social economics and political shall inform all the institutions of the national life. Many goals are now to be achieved. The directive principles of our constitution are based on the aspects of the problem. There should be a social revolution for tracking social problems. It should be a total revolution, not for total values, but the total people. Lawyers have always taken the lead role. Their services of independence of the India trials are going examples. The society is to be totally transformed. Caste system is a great barrier. Exploitation of the poor and literate people by the rich has eaten up the energy of the society. Blind customs have still a great influence of the society. These have to be eradicated. State has not been very successful in combating the problems and rise to the expectation of the people. So people should rise to the occasion. Lawyers should take the leadership and organize the society, keeping away their personal differences and political affiliation. By earning money to eat, drink and be merry should not be the goal of life. That will give rise to envy, anger, selfishness, hatred and above all the most dangerous elements, ego, our dharma, and the scriptures point out that we should live not only for ourselves, but also we have a duty to the society and to the people so as to have fullness in life, happiness and prosperity. In words of Paul Gilbert, a great philosopher and a judge, he said, "We have come to this world not to be loved, but to love. Not to get, but to give. Not to be served, but to serve." When the great scorer comes to write against our name, he writes, "Not whether we own or lost, but how we played to game." Thank you very much. My friends, I'm grateful to the organizer. I'm grateful to this function. I'm also thanks to all the organizers and also Natmal Bhai to invite me and also to allow me to participate in the function. Thank you very much again. Namaskar. Jai.
Thanks, Brother Das Ji. Aapne bahut achhi baatein batayi hain, taken efforts to really speak about the history of law and the role the legal personalities assume while serving the society. We are very grateful to you. बहुत अच्छी बात आपने जो रामायण से बताई कि राम वॉज नॉट वर्शिप्ड फॉर हिज गुड डेज, ही वॉज वर्शिप्ड फॉर द स्ट्रगल्स एंड इमर्जिंग आउट ऑफ दो स्ट्रगल्स एज विक्टोरियस. इसके ऊपर भी एक बात आती है कि मूर्ति वही पूजनीय बनती है जो हथौड़ों की मार खाती है, वरना पत्थर कदमों की ठोकरें खाता है. तो बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई, थैंक्स. और एक चीज, मेडिएशन इज द ओनली अल्टरनेटिव फॉर डिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. यू अग्रीड टू इट एंड यू एम्फसाइज्ड अपॉन इट. एंड लेट मी आई आस्क फॉर योर परमिशन टू ऐड वन थिंग कि For all kinds of mediation, let meditation be the driving force. So, let us now go beyond the words. Jo bhi yahan se uth ke ja rahe hain, thoda dhiraj dharan karenge. Abhi tak aapne suna bahut hai. Ab hum experience karne ki or badhte hain. Let us experience silence, peace and meditation. I would like to invite Raj Yogini BK sister Manorama Didi ji. Aap Ratlam se aaye hain, law graduate hain. Aap 59 years se is Ishwariya Sanstha se jude hue hain aur lagbhag 33 saalon se 33 years se aap samarpit sevaen de rahe hain. Aap hame meditation ki or lekar ke jayenge. Adarniya sister Manorama Didi ji.
Om Shanti. परम प्रिय परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंचासीन आदरणीय जस्टिस पटनायक जी, भ्राता विजय कुमार दास जी, परम आदरणीय पुष्पा दीदी जी, परम आदरणीय लता दीदी जी, परम आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, मेरी प्रिय बहन निधि जी, सभा में उपस्थित हमारे अपने ही इंदौर जोन के वरिष्ठ भ्राता जज साहब आदरणीय बीडी राठी जी एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, अभी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। इसमें आपको अपने मन और बुद्धि को अभी कुछ समय के लिए बाहरी वातावरण से मुक्त करके अपने आंतरिक स्वरूप में स्थित होकर उस पिता परमात्मा से हम संबंध जोड़कर शक्ति की प्राप्ति करेंगे। तो जैसे मैं कमेंट्री करती जाऊंगी, आप सभी भाई बहनों को उस स्वरूप में स्थित होना है। ओम शांति। इस शरीर को चलाने वाली आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस साकार दुनिया में मैं आत्मा इस पंच तत्वों के शरीर को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूं। इस शरीर में प्रकृति के मध्य विराजमान होकर अब मैं आत्मा इस देह से परे इस सूर्य चांद और तारागण से भी पार, जिसे हम सभी परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम या ब्रह्म लोक कहते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा हम सब उस अपने पवित्र धाम में पहुंच गए हैं। आहा कितना सुंदर, कितना प्यारा, ये अलौकिक मुझ आत्मा का अपना घर है, जहां मेरे पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, ऐसे पिता परमात्मा के सम्मुख बैठकर आपके समस्त गुणों और शक्तियों को मैं अपने में समाती जा रही हूं। इन परम आनंदित करने वाले इस अनुभव को मैं अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रही हूं। इन गुणों और शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस अपने इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं। शक्ति के सागर परमात्मा से शक्ति लेने के बाद अब मेरा हर कर्म शक्ति से भरपूर होगा और दैनिक जीवन में उस शांति, प्यार, स्नेह, सहयोग और खुशी मैं अपने जीवन से हर आत्मा को हर पल प्रदान करती रहूंगी, क्योंकि अब मेरा संबंध उस शांति के सागर परमात्मा से जुड़ चुका है और उनकी समस्त शक्तियों को मैं अपने द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रवाहित करूंगी। शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कुछ देर आप आवाज की दुनिया से परे चले गए थे और जब शांति की गहन अनुभूति होती है तो सच में आवाज में लौटने की इच्छा नहीं होती है, किंतु कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आदरणीय मनोरमा दीदी जी को, आपने अंतर जगत की यात्रा की ओर हम सभी का पहला पग आगे बढ़ाया है और अब समय है हम कुछ दुआएं, कुछ आशीष और प्राप्त कर लें। एंड इट इज टाइम फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम रिस्पेक्टेड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी, who is the chairperson of this tourist wing, और आप विशेष दिल्ली में कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी दिल्ली करोल बाग सेंटर्स की। आपको शक्ति लाइफ Lifetime Award से नवाजा गया है by Yoga Confederation of India in 2015. Prominent Personality Award by Telugu Employees Welfare Association. Felicitation Certificate from Central Government Employees Welfare Association. Saraswati Memento, आपकी जीवा पर वाकई सरस्वती विराजती हैं, आज आप उनके ज्ञान के जो बोल सुनेंगे वो अंदर तक आपके चले जाएंगे. 1976 में आपने अपना जीवन ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित किया. And you are not only a nationally acclaimed speaker and motivational, but you are also an international traveler, and you have touched the lives of so many hundreds of souls, and we are really blessed to have amongst us. Let us hear her out. Adarniye Rajyogini Brahma Kumari Pushpa Devi ji, hum taliyon ke saath apne harsh ka udbodhan karenge.
ओम शांति. सुप्रीम जस्टिस सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, विशेष रूप से मंच पर विराजित हमारे विशेष मेहमान ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस परमार्थ पटनायक, रिस्पेक्टिंग ब्रदर विजय कुमार दास, हमारी आदरणीय बहनें, आदरणीय लता दीदी जी, लक्ष्मी दीदी जी, मनोरमा बहन, निधि बहन, और खास तौर पर हमारे समक्ष हमारे ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी जी, जो कि इस विंग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं और साथ साथ बहुत समय के राजयोग के अभ्यासी भी हैं, और हमारे आदरणीय नथमल भाई जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, और आप सभी विशेष क्या था और हमारी रश्मि बहन जी वो भी समक्ष हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, और विशेष रूप से आप हमारे सभी आमंत्रित मेहमान लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए और अन्य सभी हमारे बीके भाई बहने. मैं तो ऐसा कहूंगी कि मुझे आप सबको यहां उपस्थित देखकर बहुत हर्ष हो रहा है. आप सोच रहे होंगे कि हर्ष तो आपको हो रहा है, एम आई राइट? किसको ज्यादा हो रहा है, आपको या हमको? आप सबको हो रहा है तो हाथ हिलाइए. वेरी गुड, फिर तो ताली बजनी चाहिए. क्योंकि जहां पर इतने लीगल लाइन से जुड़े हुए इस प्रोफेशन के आप सभी बैठे हैं, तो मैं तो ऐसा समझती हूं कि भारत के अंदर अवश्य ही ये कानून ऐसा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए कि इसमें आपको ज्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां आकर आप ये जान रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता में कितना बल है. यहां के वातावरण से ही आप महसूस कर रहे हैं, और इन 3-4 दिनों में अवश्य ही आप इसका इतना अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कानून क्या करता है और किस लिए उसका इस्तेमाल करना आवश्यक होता है. और आज मानवता किस स्तर तक पहुंच चुकी है, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे केसेस जो आपने कभी मन चित्त में भी नहीं सोचे होंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे, और उनको फिर हल करना, कानून की दृष्टि से उसे किस तरह टैकल करना, ये कितनी मेहनत का काम आप सभी करते हैं, इसलिए मैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दिन रात की आपकी मेहनत इस समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आपके द्वारा की जा रही है। और ये आवश्यक भी है क्योंकि समाज कानून और न्याय से और समाज आध्यात्मिकता से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उसी से ही व्यवस्थित हो सकता है। पर एक समय था, हमारे इंडियन मैथोलॉजी में आता है कि ऐसा समाज था जहां ना दंडे ना दंडिका, ना कोई दंड का वो था जिसको दंड मिले ऐसा व्यक्ति, और ना कोई दंड देने वाला था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां कैसा मानव रहा होगा, उसकी लाइफ कितनी सुव्यवस्थित होगी, कितनी संयमी होगी, कितनी नियमबद्ध होगी, जो ना कोई इस काबिल इस बात के लिए होता कि उसे कोई दंड मिलना चाहिए, तो दंड देने वाले की भी जरूरत नहीं रहेगी। और ऐसे ही समाज का, ऐसे ही उस समय के युग का ये गायन भी आता है कि कैसा जैसा राजा वैसी प्रजा, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। तो धर्म अर्थात आचरण, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में वह आचरण सिखाती है जिससे ना हमें किसी प्रकार की तकलीफ हो, ना हमारे द्वारा किसी प्रकार की तकलीफ हो। आप यहाँ के राजयोगी भाई बहनों के व्यवहार से भी अनुभव करेंगे कि वो किस प्रकार से आपके साथ कितने मिठास से और कितने सेवा भाव से और कितनी नम्रता से आपके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। ये तो आप कुछ समय का अनुभव इस समय कर ही रहे हैं, और जब हमारी लाइफ खुद की ऐसी बन जाती है तो हम स्वयं आंतरिक रूप से सुखी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपके मन में ये आ सकता है, कभी बाद में तो नहीं आएगा लेकिन अभी आ सकता है, या यहाँ से जाकर आप अपने साथियों को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके कोर्ट में साथी होंगे या प्रोफेशन में जहाँ भी आपके कार्य में सहयोगी होंगे, जरूर आप रह नहीं सकेंगे उनको बताए बिना, और जब यहाँ का अनुभव सुनाएंगे तो उन्हें कुछ आश्चर्य हो सकता है या आपसे प्रश्न कर सकते हैं, भाई कहाँ कानून और कहाँ आध्यात्मिकता। आपके भी मन में हो सकता है जब बहनों ने इनविटेशन दिया हो, भाइयों ने, कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं एक लीगल प्रोफेशन का व्यक्ति क्या समझूं और सुनूंगा, आध्यात्मिकता से मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लॉयर्स जजेस आते रहे और आते हैं, और वो रेगुलर यहाँ का ज्ञानश्वरण और राजयोग का अभ्यास करते हैं। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आया करते थे, अभी तो शरीर का त्याग कर दिया। मैं ये बात 1974 की सुना रही हूँ, जिस समय ब्रह्मा कुमारी इसको सभी इतना नहीं जानते थे, अभी तो इंटरनेशनल लेवल पर सभी ही मोस्टली जान गए हैं कि ये संस्था क्या है। तो उन्हें जब इनवाइट किया गया, और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड सीनियर एडवोकेट थे और बड़े बड़े केसेस उनके पास जाते थे, लालचंद वत्स, मैं नाम भी सुना देती हूँ, अभी भी उनकी यादगार में जो हमारी दिल्ली की लोकल कोर्ट है 30,000, उनके नाम से बहुत बड़ा एडिटोरियम बना हुआ है वहाँ, जहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं, और कई बार इस प्रकार के लेक्चर्स हमने वहाँ किए भी हैं। तो उनको बड़ा मन में आया कि ये बहनें क्या समझती हैं, मैं इतना बड़ा एडवोकेट और इतनी कानून की जड़ों में गया हुआ हूँ, और ये मुझे कह रही है मेडिटेशन करने आओ, ये सुनो, तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा और उन्होंने कह भी दिया और मन में उनके चलता रहा। तो बहनों ने रिक्वेस्ट की, अच्छा कुछ नहीं, हमारा जो बेसिक कोर्स है वो 7 डेज का है, रोज 1 घंटा, आप आधा घंटा लीजिए, आप बुद्धिजीवी हैं, जल्दी कैच कर लेंगे। सिर्फ इतना कहना आप मानिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, आप तो खुद ही न्याय को समझते हैं, अच्छे और बुरे की कानून के हिसाब से नॉलेज रखते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा झटका तो लगा कि बात में कुछ दम है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और सचमुच बड़े प्यार से और उसी धारणा से उन्होंने वो क्लासेस की। और क्लासेस के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने इतना अच्छा इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और मेडिटेशन का रेगुलर अभ्यास करना आरंभ कर दिया। मैं आगे और तो इतनी बातें उस विषय में नहीं कहना चाहूंगी। फिर वो स्वयं हर एक को कोर्ट में ओपनली कहते थे कि जब तक आपने ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को सुना नहीं, समझा नहीं, तो आपने लाइफ में कुछ नहीं पाया। आप कानून के द्वारा न्याय भी कहां तक कर सकते हैं, आप थोड़ा अंदर से सोचिए। कानून एक किताबी ज्ञान के द्वारा, एक ह्यूमन डिसीजन के द्वारा बना हुआ, उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हृदय की सच्चाई, परिस्थितियां आपकी कुछ और समझ रही हैं, तो आप उसका डिसीजन कैसे ले सकते हैं। और ये आध्यात्मिकता में शक्ति है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी अंतर आत्मा की रियलाइजेशन है, और आध्यात्मिकता से जो अंतर आत्मा की रियल पावर्स हैं वो काम करना शुरू कर देती है। और उसी के आधार से, वैसे भी देखिए, जब मनुष्य का मन विचलित होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, तो वो खुद ब खुद छोटी छोटी बात का भी डिसीजन ठीक नहीं ले पाता। और कहां आज की ऐसी लाइफ, उसको तो आप जानते हैं अच्छी तरह, आप भले कानून को सामने रखते हुए स्टडी करते हुए कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है दूसरे व्यक्ति का, और समाज में उसी आधार से सारा वातावरण बनता है। मनुष्य क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है? क्योंकि वो जब देखता है कि मुझे आसपास से, परिवार से या समाज से, किसी भी प्रकार की अन्य सारी रास्तों से ठीक निर्णय नहीं मिला, तो शायद कोर्ट से मिलेगा। और उसके आप सब अच्छी तरह से अनुभवी हैं कि उसको कितना ठीक निर्णय मिल पाता है। वैसे तो जजेस और लॉयर्स आर कॉल्ड हीलर ऑफ द सोसाइटी, कि आप समाज की समस्याओं का हल करते हैं और उनको एक ऐसा रास्ता देते हैं कि वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सके, समस्याओं से दूर हो सके। और कितनी आप आज देख ही रहे हैं, आपके मन में भी आता है कि इस व्यक्ति की समस्या का सुधार हो जाए, हल हो जाए। आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज की कुरीतियों को भी भगाते हैं, पारिवारिक समस्याओं का भी हल करते हैं, समाज में पड़ी हुई दरारों को मिटाते हैं। और कितने प्रकार की तो आज समस्याएं हैं, उसकी तो गिनती करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। परंतु कानून के साथ जब आध्यात्मिकता दोनों मिलकर के चलते हैं, क्योंकि कानून बुद्धि चलाता है, लेकिन आध्यात्मिकता हमारे मन को, हमारी बुद्धि को भी और हमारे संस्कारों को भी एक ऐसा मोड़ देती है, एक ऐसा नवीनीकरण लाती है कि जिससे हमारे जीवन के अंदर वो सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है। एक बार एक सेठ के पास एक जमींदार का, उसने उससे पैसा लिया हुआ था, काफी ब्याज था, और उसने अपनी ऐसी परिस्थितियां समस्याएं सुनाई कि सेठ को उसके ऊपर रहम आ गया और उसने उसके ब्याज को माफ कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसको पता चला कि उसी ही जमींदार के पास, क्योंकि कई किसान खेती करते थे और एक किसान के साथ, क्योंकि उसने भी उससे पैसा लिया हुआ था और वो लौटा नहीं पा रहा था, तो उस जमींदार ने उस किसान को कोड़े लगवाए, मार दी बहुत, और ये घटना उस सेठ तक पहुंच गई। तो उस सेठ को बड़ा अजीब लगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया और उसी ही व्यक्ति ने दूसरे के साथ उसको कोड़ों की सजा दी। तो सेठ विचलित हो गया और उसने वापस उस जमींदार को अपने पास बुला करके उस घटना के बारे में बताते हुए, और उसने स्वीकार की तो जो उसका ब्याज माफ किया था उसको वापस उसके ऊपर उसका जुर्माना लगा दिया। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो व्यवहार हम स्वयं से चाहते हैं, हम छोटी सी भी गलती करते हैं तो हम सोचते हैं हमें माफ कर दिया जाए, हमें मैंने और कुछ नहीं किया या जानबूझकर नहीं किया। परिवार में ही देखिए कितनी बातें होती हैं, और आपस में रिश्तेदारों में कितनी बातें होती हैं, प्रोफेशन में ही कितनी बातें हो जाती हैं। आपका सीनियर आपके अगर डिसरिस्पेक्ट कर दे तो आपको मन में कितनी हलचल पैदा हो जाती है और आत्मा अंदर से कितनी दुखी सी हो जाती है। तो सचमुच वास्तव में आध्यात्मिकता हमको वो बल देती है जिससे कानून का पालन अपने आप सहज हो जाता है और दूसरों के प्रति भी हमारी वैसी ही व्यवहार की दृष्टिकोण बन जाता है जो हम स्वयं के प्रति चाहते हैं। अगर मैं स्वयं के प्रति ये चाहती हूँ कि मेरे से कोई ईर्ष्या ना करे, कोई मेरे से नफरत ना करे, सभी मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें, तो क्या मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति ऐसा है? चाहे वो सीनियर है या जूनियर है या परिवार का सदस्य है या फ्रेंड है, कोई भी है, तो इस प्रकार की फीलिंग्स जो सच्चाई है वो हमारे अंदर आध्यात्मिकता से ही संभव है, कानून से नहीं। कानून सिर्फ बता सकता है कि ये गलत है ये सही है, लेकिन गलत को सही करना सिखला दे, उसका गलत जीवन से मिट जाए, वह कर्म फिर दोबारा नहीं हो, ये कानून में ताकत नहीं, आध्यात्मिकता में ये ताकत है। कि आज अगर किसी से कोई गलती होती है तो वो आध्यात्मिकता से सुधार सकता है, अपने जीवन का परिवर्तन कर सकता है और एक सुख शांति की राह पर सहज चल सकता है। तो जब वो स्वयं का जीवन ऐसा बनाएगा तभी तो वो दूसरों का जीवन ऐसा बना सकता है और अपने जीवन के अंदर क्षमा और रहम की शक्ति ला सकता है। और उस बेस पर जब हम निर्णय देते हैं दोनों को मिला करके, कानून को सामने रखते हुए, और इस प्रकार से सच्चाई जीवन की क्या है उसकी रियलाइजेशन के साथ, तो ये समाज बहुत सहज सुव्यवस्थित हो सकता है। और ब्रह्मा कुमारी इसी लक्ष्य को लेकर के चल रही हैं और इसीलिए ये न्याय प्रभाग बनाया गया, क्योंकि कईयों के मन में प्रश्न उठते हैं कि ये किस लिए। तो आप सभी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके द्वारा तो समाज का बहुत उद्धार हो सकता है और आपका स्वयं का उद्धार उसमें समाया ही हुआ है। और हमारे सभी इस प्रभाग से जुड़े हुए भाई बहने भारत के सभी ही हाई कोर्ट्स में, लोकल कोर्ट्स में, छोटी छोटी पंचायतों में, गांव में भी जाकर के इस बात की एकदम जागृति लाते हैं कि कैसे आपको कानून और इस आध्यात्मिकता से, जो हमें परमात्मा और आत्मा का अध्ययन करना सिखलाती है, सच्चाई को जीवन में लाती है। और इसीलिए कहा भी गया है कि न्याय ट्रुथ से ही होता है, सत्य का मंदिर कहा जाता है न्यायालय को। तो वो सत्यता की शक्ति भी उस सत्यता परमात्मा से ही प्राप्त होती है। अपने आप से मनुष्य आज इतना कमजोर हो चुका है कि वो खुद कंफ्यूज रहता है, अंतरात्मा चाहते हुए भी कि मैं ये निर्णय ऐसे नहीं ऐसे दूं, लेकिन कर नहीं पाता है। तो वह शक्ति भी जीवन में आध्यात्मिकता से ही आती है। तो मैं और अधिक न कुछ बताते हुए स्नेही प्यारे भाई बहनों यही शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ और आप सबके लिए बहुत उन्नति और साथ साथ आपका जीवन सदा ही सुख शांति से संपन्न रहे ऐसी हमारी आप सबके प्रति भावनाएं हैं और इसीलिए आप सबको बुलाया गया है। नहीं तो कौन किसको संसार में ऐसे ही कहता है हा? कई बार कई कई भाई कहते हैं बार बार हमें भाई बहन कहते हैं आइए 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 चलो हम चल करके देखते हैं। अब तो आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं अनुभव भी कर रहे हैं यहाँ का व्यवहार भी समझ रहे हैं और राजयोग की क्लासेस भी लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप सबसे कि जल्दी ही आप इस चीज को महसूस करते हुए अपने जीवन को इस उच्च शिखर की ओर ले जाएंगे और अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपनी लाइफ भी पर्सनल लाइफ भी और औरों की लाइफ को भी ऐसा ही विशेष बनाएंगे और उनके जीवन में भी शांति आ जाए। ऐसे ही शब्दों से मैं फिर से आप सबसे आग्रह करते हुए ये कहूंगी कि आप अवश्य ही अपने जीवन को इस राह पर ला करके क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है ये कोई नाम या मंत्र कोई जाप नहीं है ये सत्यता की रियलाइजेशन है और एक दिन यही हमारे जीवन को इतना महान बना देगी तो आपको आज का दिन याद आएगा कि मेरा वो कितना भाग्य का दिन रहा और वो भाग्य का समय रहा जो मैंने जीवन की सच्चाई को समझा। तो आप सबके हम बहुत बहुत आभारी कहें हाँ धन्यवाद कहें जो आप अपने जीवन को इतने अच्छी राह पर लाने के लिए पहुंच गए हैं। तो आपका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है और हमारी बहुत बहुत सभी की आपके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं हैं। ओम शांति
ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का कितना दिल से धन्यवाद करें फॉर हर वर्ड्स ऑफ विजडम ऑफ इंस्पिरेशन एंड इनवैल्यूएबल ब्लेसिंग्स। हम सब बहुत कृतार्थ हैं क्योंकि हम आज जो देख रहे हैं आपका प्रैक्टिकल जीवन देख रहे हैं और दिल से जब दुआएं निकलती हैं तो जरूर दिलों तक पहुंचती हैं। और अभी बहुत सुंदर समय है आप सभी जो यहाँ बैठे हैं आपको आपके इस ईश्वरीय घर की ओर से ईश्वरीय सौगात मिलेगी। आप सभी दो लाइनों में आएंगे अपने फुटुराए हैं अपने प्रोफेशन से चुराए हैं समाज से चुराए हैं इन दो दिनों का बिल्कुल आप कहेंगे झोली भर करके ही यहाँ से जाइएगा। बहुत इनवैल्यूएबल क्लासेस हैं यहाँ पर एंड यू वुड बी रियली हैप्पी टू नो देयर वुड बी टू क्लासेस फ्रॉम बीके सिस्टर शिवानी सो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट टू।